हंस रहे क्योंकि आप जानते हैं खुदा ऐसे नहीं कहते। आप जानते हैं कि ये खुदा का तर्ज कलाम नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे ही तेज तरार हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है जब शैतान इसी तरह बातें बनाता है। ऐसा ही किस्सा उस औरत का है जिसने कुर्बान गाह के पास आकर मुझसे कहा था कि हमारे लिए दुआ कीजिए, शैतान मुझसे झूठी बातें करता है। मैंने कहा माफ कीजिए, शैतान आकर आपसे झूठ बोलता है यह जानते हुए कि शैतान जो कह रहा है वो सही नहीं है, फिर भी आप परेशान होती हैं। कुछ समझ में आ रहा है? मैं समझती हूं बहन, आप सही रास्ते पर जा रही हैं। मतलब ये सुनकर हंसी आती है कि आप ऐसा सोचती हैं, शैतान मुझे परेशान करता है, वो मुझसे झूठ बोलता है, शैतान मेरे जहन में ये ख्याल डालता है। पैदाइश 13:14 लौट का साथ छोड़ जाने पर खुदा ने अब्राहिम से कहा, तुम जहां हो वहीं से आंख उठाकर देखो, अपनी सभी का मिल्कियत के बारे में मत सोचो। खुदा ने हिदायत दी, शुमाल जुनूब मशरिक और मजरिब हर सिमत देखो और जितनी जमीन तुम्हें दिखाई देती है मैं उसका मालिक तुम्हें बनाता हूं। आज मैं आपसे कहूंगी, सच्ची बात यह है कि आपकी जिंदगी में जो गुजर रहा है वो बफजल खुदा आपका मुस्तकबिल बहुत शानदार है। मैं कहती हूं जो अभी है या नहीं है उस पर झांकिए नहीं, आंखें खोलिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, खुदा का नाम लेकर पूरे ईमान के साथ अपने आसपास देखिए, पूरे एतकाद के साथ उसे याद कीजिए, वो आपको नवाजेगा। खुद को हमेशा उस तरह ना देखिए जैसे आप हैं। मैं महसूस करती हूँ कि रोज बरोज खुश मिजाज से खुश मिजाज होती जा रही हूँ। मैं कितनी अच्छी हो रही हूँ, वाह क्या बात है, अच्छी बात है ना। पैदाइश 11:6 में खुदा फरमाता है वो सब लोग एक जैसे हैं, उनकी एक ही जबान है और यही नुक्ता आगाज है इस बात का कि वो क्या करेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जो करेंगे वो उनके लिए नामुमकिन होगा। मस्बत फिक्र की कितनी अहमियत है कि खुदा ने खुद कहा है, अगर तुम यकीन करते हो और अपने अकीदे में मुस्तकम हो तो कुछ भी नहीं जिसकी तुम तमन्ना करते हो मुहाल होगा तुम्हारे लिए, खुदा की कसम। आप सोच नहीं सकते मैं कैसे नामुमकिनात को अंजाम दे रही हूं। सचमुच आपके तसव्वुर से परे की बात है। मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ नहीं, लेकिन मेरे साथ खुदा का कितना करम व एहसान रहा है मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मैं वो हूं जो मैं जानती हूं। यह हैरत अंगेज है। तर्ज फिक्र बूढ़ा नहीं होना चाहिए। आयत नंबर 14 देखिए, इसराइलियों का बहुत ही घटिया मिजाज था जो शर्मनाक था, वरना वो सहरा से 11 दिनों में निकल सकते थे, मगर 40 साल तक वहीं फंसे रहे। मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी के साथ ऐसा हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसा हो। आयत 14, मैं आपको 3 सहीफों के हवाले देकर बताना चाहूंगी कि उनमें से किस तरह खराब तर्ज अमल की सराहत की गई है। नंबर 14:2-3, इजरायली शिकवा शिकायत करते रहे और अपने हालात से नफरत करते रहे और मूसा और हारून को कसूरवार बताते थे। उन्हें दूसरों की गलती नजर आती थी और सब कहते थे कि इससे तो अच्छा था हम मिस्र में मरते या फिर हमें इसी बयाबा में मौत आ जाती। खुदा ये एहसान क्यों नहीं करता? उन्हें खुदा से शिकायत थी कि वो उन्हें इस भयानक जगह में क्यों ले आया। हमारी बीवी और छोटे छोटे बच्चे भी दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाएंगे। इससे तो अच्छा होगा कि हम लोग मिस्र लौट जाएं। ये कैसा अंदाजे फिक्र था? आयत 20:2-4, गुलामी से निकलने की तदबीर ढूंढिए। गुलामी से निजात हासिल करने का रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। बैठकर सोचिए, हमारा कोई मुस्तकबिल है, खुदा ने हमारे लिए कुछ सोचा है। मैं आज आपका हौसला बढ़ाती हूं। पानी की किल्लत हुई, आयत 20:2-3-4, इसराइलियों की जमात को पानी की किल्लत हुई तो वो सब मूसा और हारून के खिलाफ गोलबंद होने लगे थे। इन सबों ने आगे बढ़कर मूसा से कहा, क्या अच्छा होता कि हम भी अपने भाई बंदों के साथ हैजे से मरकर खुदा के पास पहुंच जाते। आप खुदा के इन बंदों को इस वीराने में किस लिए लेकर आए हैं? हमारे और हमारे मवेशियों की हलाकत के लिए। आयत 21:4-5, ये लोग कोहे होर से बहरे अहमर के रास्ते खिताए एदोम में पहुंचे थे। सफर की सख्ती से उन लोगों का सब्र जवाब दे चुका था। उन पर बेदिली और बेहिम्मती तारी हो गई थी। इसकी वजह से वो सिर्फ मूसा के खिलाफ नहीं बल्कि खुदा की शान में भी नाजेबा कलमात बोलने लगे। तुम हमें इस बयाबां में मरने के लिए मिस्र से क्यों निकाल लाए? हमें इस गैर हकीकी मन्ना से नफरत है। ये है गलत तर्ज अमल। अब अंजाम मुलायजा हो, आयत 6, खुदा ने उन लोगों की तरफ खौफनाक सांप भेजे जिन्होंने उन्हें डसना शुरू किया। उनमें से बहुत सारे हलाक हो गए। फिर उन लोगों ने मूसा से आकर कहा, हम गुनहगार हैं। मैं समझती हूं कि ये समझे बगैर कि हमारा तौर तरीका गलत था, अपनी जिंदगी ही में इस नतीजे पर पहुंचना एक शर्मनाक बात है। वो इस तरह की अपनी गलत रविश से दरवाजे के दोनों पट खोल दे कि शैतान अंदर घुसकर हमें तबाह कर दे और हमारा सारा का सारा असासा भी समेट कर ले जाए, कबल इसके कि हमें खुदा के हुजूर जाकर अपने बुरे तर्ज अमल का एतराफ करते हुए, अफसोस का इजहार करते हुए, खुदा की इनायतों और मेहरबानियों का इकरार करना है और अपने बुरे तर्ज अमल का कोई जवाब भी पेश न कर सके, मगर खुदा की अच्छाइयों और अजमत के साथ ये तस्लीम भी करें कि खुदा कादर मुतलक है। सुनिए, हमारा ख्याल है कि हम जल्द ही उस मकाम पर पहुंच जाएं जहां अपने गलत रवैये पर पशेमानी जाहिर कर सके। आप में से कोई है जिनका तर्ज अमल नापसंदीदा है और जो यही तर्क करके उठना चाहते हैं? कोई है जो अपनी सोच को बदलना चाहते हैं? कोई है जो किसी हद तक मजबूत रवैया अपनाना चाहते हैं? आप में से कितने हैं जिनका अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई मंसूबा है और इस सोच से निकलना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आखिरी मरहले में है? तो आज रात आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ पा लेने पर भी आप आजादी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप ना चाहें खुदा आपकी मदद नहीं करेगा।